कृष्ण
हरे कृष्ण
श्री अवंता अवंतिका नगरी वासियों भगवान श्री मदन मोहन के सेवक और कृपा पात्रों भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी और सुदर्शन चक्र को प्रतिवर्ष नगरवासियों के कल्याण के लिए विश्व कल्याण के लिए रथ यात्रा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापिकाचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभिचरण अरविंद भक्तिविदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनुकंपा से परम पूज्य श्री श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी महाराज की प्रेरणा से जो भाग्यशाली भक्त हैं उज्जैन के ये वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। कल हमने जगन्नाथ अष्टकम के पहले श्लोक का रसास्वादन किया था आपके संग, आज दूसरे श्लोक का रसास्वादन करके फिर हम आगे जहाँ कल कथा को विराम दिया था वहां से कथा को आगे बढ़ाएंगे। सो पहले ये सिद्धांत सामने रखिए, से ही गोरा से ही जग कृष्ण से ही जगन्नाथ, जे हाँ त्रिभुवन करे यार चरण बंदन, त्रिभुवन करे यार चरण बंदन, सो से ही कृष्ण से ही गोरा से ही जगन्नाथ। सो कल कृष्ण का इस भाव का आपने रसास्वादन किया, कदाचित कालिंदी तट विपन संगीत करवो, ये रास विलास का प्रभाव अभाव है। मोदाभीर नारी वदन कमला स्वाद मधुप, भगवान बम्बल बी की तरह भावरे की तरह मनोहर मुख वाली गोपियों को रसास्वादन अधरा अमृत पिला रहे हैं और इसकी महिमा लक्ष्मी शंकर ब्रह्मा जी इंद्र और गणेश गा रहे हैं, ऐसा भगवान जगन्नाथ हमारी दृष्टि के सामने प्रकट होके हमारा मनोरथ सार्थक करके अपनी कृपा पात्र बनाए। दूसरा श्लोक भी ब्रज का भाव है, भोजे सवई वेणु सिरसे सिखी पुछम कति टटे, दोकोलम नेत्रांते सहचर कटाक्षम विदधते, सदा श्रीमद वृंदावन वसति लीला परिचय, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवा तुमे। भुजे सवे वेणु, अपने उल्टे हाथ में बांसुरी को पकड़ के रखा है, अपने उल्टे हाथ में लेफ्ट हैंड में भगवान ने वेणु कहते हैं, वेणु बांसुरी मुरली, और जब भगवान बजाते हैं तो उनका नाम हो जाता है मुरली मनोहर। मुरली बजाने से सबके मन को हर लेते हैं। सो अपने वाम हाथ में मुरली को वेणु को धारण करते हैं, सिखी पुछम, सिखी पुछ कहते हैं मोर के पंख को, वो भगवान अपने सर के ऊपर पगड़ी में धारण करते हैं। ये दोनों विशेषताएं श्री श्री कृष्ण की केवल हैं और कोई नहीं करता है, नारायण भी नहीं करता। वेणु आपको किसी के हाथ में नहीं मिलेगा, किसी भगवान के अवतार के हाथ में बांसुरी वेणु नहीं है। और मोर पंख भी केवल मुरली मनोहर के हाथ में है। सिखी पुछम, सिखी पुछम का मतलब मोर का पंख। कटी तटे दुकूल, कटी तटे दुकूल, कटी तट ये कटी प्रदेश भगवान की कमर को कहते हैं। कटी के तट पे, इसका मतलब कमर के ऊपर। और दो कूल, दो कूल, दो कूल जो शब्द है बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां भगवान श्री कृष्ण की माखन चोरी की बात की जाती है तो कहते हैं ब्रजे प्रसीदम नवनीत चोरम गोप अंगना नाम दुकूल चोरम। वहां भी दुकूल शब्द है और यहां भी है दुकूल। तो गोप अंगनाओं का दुकूल चोरम को, कौन सा कपड़ा चुराया था, बोला दो पट्टे वाला दुपट्टा। दुकूल का मतलब वो कपड़े जिसके दो पट्टे होते हैं, सिला हुआ कपड़ा नहीं, जिसको दुपट्टा कहते हैं, पीतांबर जो भगवान कमर के ऊपर बांधते हैं या कंधे के ऊपर धारण करते हैं। तो धोती के ऊपर और पट्टा एक बांधते हैं, उसको दोकूल हम कहते हैं। तो भगवान ने गोपियों के जो वस्त्र दोकूल चोरम, और तीसरी बात लिखी है नेत्र अंते सहचर कटाक्ष विदधते। नेत्र अंते जो आंखों के ये किनारे हैं जिसको कहते हैं साइड लॉन्ग ग्लैंसेस, कृपा कटाक्ष कहते हैं, भगवान की प्रेम की कृपा का कटाक्ष है वो। किस पे, किसके ऊपर ये कृपा की कटाक्ष मारते हैं, अपने प्रेमी भक्तों के ऊपर। कहां मारते हैं ये, न माखन चोरी कहीं करते हैं न वेणु कहीं बजाते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में भी कभी बांसुरी नहीं बजाई, द्वारका में वेणु नहीं ले गए, ये मोर कम पंख भी ब्रज में रह गया, और ये कटाक्ष कृपा कटाक्ष भी कृष्ण का तिरछी नजरों से देखना दूर दूर तक गोपियों के हृदय को प्रेम में ओतप्रोत करना, ये भी वृंदावन में और कहीं नहीं। सदा श्रीमद वृंदावन वसति लीला चरितो परिचयो, बोला ये जो लीला है जिनका वर्णन कल किया और आज कर रहे हैं, ये तो श्रीमद वृंदावन में है, ब्रज धाम में है केवल। वहां ऐसे अद्भुत लीला करते हैं सघोषम निमेजंतम आख्यापयंतम इति दृकस्व लीला भी आनंद कुंडे। सघोषम केवल ब्रज में गोप ग्वालों के बीच में, गौ गोप अलंकृत जो ब्रज है उसमें ये लीलाएं करते हैं। कहते हैं एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारका में सब गोपियों को ले गए थे, राजा रानी भी वहां गई, तो भगवान ने रानियों ने कहा कि हमने सुना है ब्रज में आप रास करते हैं, ये गोपी तालाब के ऊपर आज भी रास का चबूतरा बना हुआ है द्वारका में। तो भगवान ने राधा रानी से कहा कि श्री जी ये सब रास विहार का भी दर्शन करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तैयारी हुई, मंच बना, लेकिन राजा ने कहा रास वृद्ध से बाहर नहीं होती। श्री श्याम मन में रास का भाव केवल ब्रज में ही उदय होता है और नहीं होता, कहीं नहीं होता। तो ये यहां जो कह रहा है कि ये लीलाएं केवल श्रीमद वृंदावन में होती हैं, और ये भक्ति जो ब्राह्मण वृंदावन की है इसको कहते हैं राग अनुगा साधन भक्ति। जिस भक्ति में वृंदावन के भगवान के नित्य पार्षद जो राग आत्मिक भक्त हैं, उनके अनुगामी बनकर भगवान की सेवा में लगने से भगवान के धाम में जाना और इन लीलाओं का रसास्वादन करने का सौभाग्य हो सकता है। क्या क्या लीलाएं भगवान ने ब्रज में की है, 3.5 वर्ष तक, 3.75 महीने तक गोलोक में बाल लीलाएं की, वात्सल्य प्रेम के भक्तों को धन्य किया। बाल लीलाओं में माखन चोरी की लीला से लेकर और परिकाष्ठा इस लीला की, दामोदर लीला है जिसमें प्रेम से भगवान बंध गए, ये सौभाग्य न विष्णु को, ये सौभाग्य न श्री जी को मिला, लक्ष्मी को मिला, न शंकर को मिला, न ब्रह्मा को मिला, ये तो गोपी ही यशोदा को मिला जिसने यश दे दिया, कृष्ण को दामोदर के नाम से प्रसिद्ध कर दिया विश्व में। और 4 साल 3 महीने तक भगवान ने वृंदावन में ब्रज में लीलाएं की। क्षतिग्रह में आके नंद बाबा रुके और रावल से वृषभानु महाराज जहां राधा कुंड जाते हैं, रास्ते में रावल आते हैं, रावल के पास रुके और यहां भगवान श्री कृष्ण की वत्स चारण और गौचारण लीला हुई जिसमें ब्रह्मा विमोहन लीला बड़ी अति। भगवान ने कहा मुझे सब कहते हैं कि माखन चुराता है, मैं तो बच्चा हूं, कोई बात नहीं, मुझे सब चोर कहते हैं, आज ऐसी लीला मैं करने जा रहा हूं जिसमें चतुर्वेद का ज्ञाता ब्रह्मा जी चतुर्मुख चोरी करेगा, मैं तो माखन की चोरी करता हूं, दही दूध की चोरी करता हूं, ये तो बछड़े और ग्वाल बाल चुरा के जाएगा। देखो इस लीला को, ये भगवान की सखाओं की लीला में अद्भुत लीला है। पाप के मुंह में चले गए सारे सखा, अघासुर, अघ पाप को कहते हैं, असुर, पाप रूपी असुर के मुंह में चले गए सब ग्वाल बाल। कन्हैया पाप के मुंह से जीवित बाहर निकाल के आया निष्पाप बालकों को, ऐसा सखा कहीं नहीं मिलेगा जो पाप के पेट से जीवित वापस लेके आ जाए। अघासुर के उधार में अघासुर की आत्मा कृष्ण के चरण में प्रवेश किया और आश्चर्य लगा, यमराज मूर्छित हो गए, इतना पापी और इसके योगियों की गति मिल गई। बड़ा उत्सव होने लगा स्वर्ग में, ब्रह्मा जी देखने लगे क्या है नीचे आके, और ब्रह्मा जी ने और लीला देखना चाहिए और ग्वाल बालों को और बछड़ों को चुरा लिया। ये लीला भगवान के सखा लीला की परिकाष्ठा है। और फिर 3.5 साल तक श्री कृष्ण जब वो नंद भवन में रहे हैं, तब वृषभानु महाराज बरसाना में रहे हैं, तब श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं गोपियों के संग में। कृष्ण की आयु तो 9-10 साल है, 11 साल से तो ज्यादा रहे ही नहीं ब्रज में, तब गोपियों के साथ जो लीलाएं हैं उन लीलाओं की परिकाष्ठा है रास लीला। सर्व लीला मनोरम, तो ये सारी लीला केवल वृंदावन में कृष्ण ही कर सकता है, अपने गोलोक धाम से लाए हुए पार्षदों के साथ ही करता है। ये जगन्नाथ अष्टकम का दूसरा श्लोक है। कल जगन्नाथ का वर्णन जगन्नाथ अष्टक में आएगा, इसका वर्णन कल करेंगे। कल जहां हमारा आपके साथ हरि कथा का विश्राम हुआ था, वो ये चर्चा चल रही थी कि श्री कृष्ण का जगन्नाथ का रूप कैसे बन गया। लेकिन रूप बनने की अभी कथा शुरू ही नहीं की थी। कल की कथा में हम यही आपसे चर्चा कर रहे थे कि रथ यात्रा का शुभ आरंभ कैसे हुआ, उसका भाव क्या है, और हमको कैसे रथ यात्रा को अपने जीवन के साधन में सार्थक करना चाहिए। इसलिए हमने कुरुक्षेत्र में कृष्ण का ब्रजवासी गोपी गोपियों से मिलना और गोपियों को कृष्ण के रथ को खींचने का जो भाव है, कृष्ण को वृंदावन में लाने का भाव है, ये हम साधकों को रथ यात्रा में कृष्ण को बलराम के साथ, बलराम बहुत जरूरी है साथ में, आदि गुरु है, बिना गुरु के भगवान नहीं मिलता। जो आचार्य तत्व गुरु तत्व बलराम जी को छोड़ के केवल कृष्ण के पास जाएंगे वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे कृष्ण को। ये नित्यानंद प्रभु ने रघुदास दास रघुनाथ दास ठाकुर के द्वारा हम सबको शिक्षा दी का रघुनाथ तुम चोर हो, सीधा चेतना महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति करना चाहते हो, जिसको जो मेरा अधिकार है मेरे बिना आज्ञा के, तुम चोर हो और तुम्हारे को दंड दिया जाएगा। दंड भी क्या भगवान देते हैं, ये सारे वैष्णव को दही चीरा खिलाओ, दंड महोत्सव दही चीरा महोत्सव गंगा के तट पे हुआ। तो कृष्ण को बलराम किस, बलराम होगा तब कृष्ण मिलेगा, परंतु ये दोनों प्रकट अपने आप नहीं होते, योग माया की कृपा से प्रकट होते। भगवान के प्रकट्य का साधन है योग माया, और योग माया है सुभद्रा। परंतु हमारे अंदर अंधकार पड़ा है, जब तक सुदर्शन चक्र ज्वाला रूप है वो हमारे अंधकार को नाश करके योग माया की कृपा से दोनों को प्रकट करेंगे, गुरु को प्रकट करेंगे और गुरु कृष्ण को प्रकट करेंगे। सो इनको हम अपने हृदय में कैसे, हृदय को वृंदावन बनाएं, ये जो छोटा सा भजन है, कोई भी कथा इस कान में शुरू होती है उससे पहले गाते हैं जय राधा माधव कुंज बिहारी, भक्ति विनोद ठाकुर का भजन है। ये 71 या 2 की बात है, इससे पहले ये भजन नहीं गाया जाता था। श्रील प्रभुपाद गोरखपुर में थे, श्री हनुमान प्रसाद पौदार के निमंत्रण पे वहां हनुमान वाटिका में रुके हुए थे। तो वहां कुछ भक्त एक श्लोक उच्चारण कर रहे थे, कृष्णाय वासुदेवाय प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस श्लोक में प्रणेत कलेश नाशाय भक्त कहता है कि हम आपका शरणागत हैं, हमारे कलेश नाश करो। ये शुद्ध भक्ति में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है, क्यों भगवान को कष्ट दें हमारे कलेशों को नाश करने का। प्रभुपाद ने जब ये श्लोक भक्तों के मुख से सुना तो बुला के कहा, ये माताजी जुहू मंदिर के 25 साल पूरे हुए थे मैं समझता हूं कि, तब आई थी कौशल्या माता जी, उन्होंने उस समय ये कथा बताई थी कि श्री प्रभुपाद ने हमको बुला के कहा आइए आपको एक और आज भजन सिखाते हैं। तब उन्होंने हमको जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवन छारी। तब से ये भजन हर इस्कान की कथा से पहले गाने की प्रथा शुरू हो गई। इसका भाव क्या है? इस भजन में वो तीन चीजें हैं जो ब्रज में आज भी ऐसे की ऐसे पड़ी थी जो कृष्ण के समय में थी। राधा माधव कुंज विहारी। राधा माधव आज ब्रज में कुंजों में विहार कर रहे हैं। गोपी जन वल्लभ गोपियों का प्रेमी गिरिवर धारी आज भी गिरिवर वही पड़ा है। अन्य स्थान लीला के बदल सकते हैं लोग, ये का वो बता सकते हैं, कोई ये नहीं कह सकता है गोवर्धन पहले यहां था, गोवर्धन तो आज भी पड़ा है। ब्रजा वृंदावन के पेड़ ऊपर नहीं जाकर नीचे झुक जाते हैं, कृष्ण के चरणों से दूर नहीं होना चाहते, वो कुंज बना देती हैं, वो पेड़ कुंज बनाते हैं। सेवा कुंज में जाके देखो, पेड़ों ने सुंदर कमरे बना रखे हैं और उसके अंदर फूल बिछा देती है वृंदा देवी और सुंदर वातावरण होता है। जमुना तीर वन चार, जमुना तो आज भी बह रही है, जमुना कहीं गई थोड़ी है वृंदावन से, वो तो जम वृंदावन का कंठहार है, चारों ओर से वृंदावन को गले का हार बन के बैठी हुई है। कोई नहीं कहेगा कि जमुना पहले यहां थी पहले वहां, वो आज भी आंखों से देख सकते हो। ये तो गोलोक धाम से राधा रानी ने जब कृष्ण ने कहा कि अब हमको ब्रज में चलना है, हमारे अवतार का समय हो गया है, तो राधा रानी ने कहा कि हे प्रिय श्याम सुंदर, जहां गोवर्धन नहीं जहां जमुना नहीं वहां हमको रसास्वादन कैसे होगा, प्रेम का रसास्वादन कैसे होगा, रास विहार कैसे होगा। भगवान ने कहा गोवर्धन को पहले भेज दिया, जमुना भी पहले पहुंच गई है। तो ये तो गोलोक के रहा, ये गोलोक धाम से नीचे धरती पे आए हैं, ये पूरा वृंदावन भी बधा धरती के ऊपर, गोलोक धाम नीचे उतर के आया है। ये ऐसे है जैसे एम्बेसी है, ये दूतावास होते हैं जैसे देश के, ये भगवान का दूतावास है इस भूतल के ऊपर। सो बात कर रहे थे ये दोनों चीजें आज भी, और तीसरा जमुना तीर वन चारी, भगवान ने कभी चप्पल नहीं पहने ब्रज में, 84 कोस की धरती के कण कण के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के अन्न आवर्त चरणों का स्पर्श हुआ है। ब्रज की रज आज भी वही है। मुक्ति पूछे माधव से मेरी मुक्ति कब होए, कहे कृष्ण मुक्ति ब्रज रज माथे लगे तो मुक्ति की भी मुक्ति होए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कृपा ब्रज में ब्रज की रज में समा के रखी है। ये गोपाल वत्सपाल से जब गोपाल होने लगे, 4 साल से जब 5 साल में प्रवेश किया तो नंद बाबा को कहा बड़ा हो गया हूं, बछड़े चराते हुए मुझे लज्जा आती है, अब तो गैया चरानी है। नंद बाबा ने कहा इतने बड़े भारी बैल ये सांड कैसे चराओगे, ये गैया देखो कैसे संभाली जाएगी। गोपाल ने बांसुरी बजाई और सारी गैया पूछ ऊपर करके शांति से खड़ी हो गई, बोला मुहूर्त निकालना पड़ेगा। तब तक सांडिल ऋषि जो जो नंद बाबा के पुरोहित है पधारे अंदर, कहा क्यों बेटा किस बात के जिद कर रहा है नंद बाबा नंद राय जी, बोला कन्हैया बोल रहा है कि गैया चराने जाऊंगा मुहूर्त निकालना। वो तो गुरु जी ने तो साथ में पोथी लाए थे खोल के, पंचांग का अष्टमी का दिन है गोप अष्टमी, कल कल ही मुहूर्त अच्छा है। नंद बाबा बोला, गुरु शिष्य मिले हुए हो, बहुत बड़ा उत्सव मनाने के लिए नंदगांव और बरसाने के बीच में। वैसे होना ये चाहिए कि वत्सपाल तो भगवान क्षतिग्रह में थे, तो गोवर्धन और क्षतिग्रह के बीच में इस क्षेत्र में, ये पूरा क्षेत्र ब्रज का है जहां भगवान कभी कोई लीला करें। सारी रात ग्वाल वालों ने अपने गायों को श्रृंगार किया, सिंहों के ऊपर सिंदूर लगाया, पूछों में हीरों के मोतियों की माला डाली और सोने सिंहों पे सोना चांदी गायों के खुर के ऊपर लगाई, बहुत सुंदर गायों को सजाया। थके हुए सो गए, सुबह उठे, मैया ने कन्हैया के हाथ में तावीज बांधा कि नजर न लगे, बाहर जा रहा है, रक्षा हो। बड़ी पूजा की, कन्हैया को सुंदर श्रृंगार कराया और फिर दो चप्पल आगे रख दिए कि कन्हैया जंगल में दूर जाना पड़ेगा, कहीं कांटा ककर न लगे, चप्पल पहन लो। कन्हैया ने बोला, मैया मेरी गायों गायों के चप्पल, उसको तो दो जोड़ी चाहिए, चार चप्पल चाहिए और 9 लाख गाय है। मैया ने कहा, भाई बेटा वो तो पशु है, चप्पल क्या करेगी। अई कन्हैया ने श्रृंगार सब फेंक दिया, बोला मेरी पूजन्य गाय माता को पशु क्यों कहा, मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। माँ ने बहुत समझाया कि बेटा कभी गाय को पशु नहीं कहूंगी, वो माता है। कृष्ण का ब्रज में मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। ये समाचार ब्रज के गायों को मिला, गाय सारी गौशाला से भाग के पूरे ब्रज के 84 कोस में अपने खुरों से धरती के अंदर जो कंकर पत्थर था उनको पीस के मैदे जैसा बना दिया। का जो कन्हैया हमारे कारण से जूता नहीं पहनेगा, उसके कहां पांव में कहीं कंकर पत्थर कांटा नहीं लगना चाहिए। और कहा, आज तक ब्रज में कन्हैया ने कोई चप्पल जूता नहीं पहना, लेकिन कहीं कांटा लगा हो, कंकर पत्थर लगा हो, उसका वर्णन नहीं है। गोपियां जरूर गोपी गीत में कहती हैं कि आप जब वन में जाते हो, हमारे हृदय विदीर्ण होता है कि आपके अनावृत चरणों पे कहीं कोई कांटा कंकर न लग जाए, आपके चरण हमारे वक्षस्थल से भी ज्यादा कोमल हैं, परंतु भगवान को लगा कभी नहीं। तो ये 3 चीजें ब्रज में आज वही हैं, गोवर्धन, जमुना और ब्रज रज। हमें आश्चर्य होता है कि इस ब्रज रज को पाने के लिए ब्रह्मा लालायत है। उद्धव जैसा भक्त ब्रज रज में लौटना चाहता है, पर आधुनिक लोग थोड़ी रज लग जाए कपड़े के उसको भी झाड़ के जाते हैं। सो कल ये कह रहे थे कि रथ यात्रा का रहस्य क्या है, अंदरूनी अंतरंग रहस्य रथ यात्रा का। 100 साल श्री कृष्ण के वृंदावन से निकले को हो गए और कृष्ण मूर्छित हो गए द्वारका में, ये कल कथा हुई थी। और इस कथा में उद्धव ने जाने से इनकार कर दिया कि मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे ब्रजवासी। बलराम जी ने भी ऐसा ही उत्तर दिया। तब सुभद्रा जब जाने को तैयार हुई, अर्जुन सारथी बने, तब बलराम जी ने बोला, भाई बहन मैके से बहन मैं जाएगी माता के घर से, अकेली नहीं जाएगी, मेरा रथ साथ में जाएगा। ताल वृक्ष का ऊपर ध्वज है, अंक है, मातली सारथी है, शेष रक्षक है रस का, रथ का। बलराम जी का रथ भी चला वृंदावन की तरफ। तब सबने मिलकर बलिष्ठ यदुवंशियों ने श्री कृष्ण को मूर्छित हालत में, ऐसे जैसे कोई नशे में कोई धुत हो, ऐसे उसको उठाया और उठा के रथ के ऊपर विराजमान किया। दारुक भगवान का सारथी है, भगवान गरुड़ ध्वज है, भगवान के रथ के ऊपर ध्वज है गरुड़, और नरसिंह देव भगवान के रथ के रक्षक हैं। अभी भी मूर्छित हालत में है भगवान, और आज भी जब जगन्नाथ जी को रथ यात्रा के लिए ऊपर स्वर्ण मंडप वेडी से जब रथ के ऊपर लाते हैं तो बहुत बलिष्ठ दैत्य पति उसको ऐसे झुमाते झुमाते लाते हैं जैसे अभी तक भगवान अपने ब्रज के प्रेम में अचेत और मदमस्त हैं। वो पांडी विजय जिसको कहा जाता है, जो लाने का विशेष एक ऐसे भगवान झूमते झूमते आते हैं, उतने बड़े ऊपर वो लगा के रखते हैं सर के ऊपर, दूर दूर तक ऐसे दिखता है जैसे हवा हवा भी आती रहती है, जैसे कोई पंखा दे रहा हो भगवान को। सो श्री कृष्ण पहले रथ पहुंचा, सुभद्रा जी ने समाचार दिया, बलराम जी पहुंचे, ब्रज का एक विशेष, ब्रज की रज में एक विशेष सुगंध है, एक सौरभ है, और श्री कृष्ण का अपना एक चरण कमल में सौरभ है, सुगंध है। ब्रज में कृष्ण के आने से चेतना आ गई। अब ब्रज में क्या स्थिति थी कृष्ण के विरह में, निधि वन में राधा रानी मूर्छित पड़ी। अब कृष्ण मूर्छित हो जाए तो उसी का ही विस्तार है शक्ति, राधा वो भी तो मूर्छित है, ये दोनों दो नहीं है, एक है। राधा कृष्ण एक तनो है, राधा कृष्ण एक एक आत्मा है, दो शरीर है। वैसे आत्मा और शरीर अलग नहीं होता है भगवान का, लीला के लिए एक से दो हो गए, परंतु चेतन महाप्रभु के रूप में दो में से फिर मिलके एक हो गए। सो राधा रानी मूर्छित निधि मन में चारों ओर सखियां घेर के बैठी हैं, ललिता विशाखा तुंग विद्या चित्रा, सारे ब्रज के पुरुष राधा रानी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। राधा रानी की सांस चरण को पकड़ के कह रही है, हे ब्रजेश्वरी, हे कीर्ति कुमारी, कृष्ण की लीला को पूर्णमासी के और योग माया के कहने के ऊपर, उस लीला में रस बढ़ाने के लिए हम आपको रोकती थी हमारे घर से जाने में, हमको क्षमा करना, जटिला कह रही है, कुटिला कह रही है। तब तथा कथित राधा पति, राधा का पति तो कृष्ण है, वो अयन घोष अभिमन्यु राधा के चरणों में प्रणाम करके कहता है, देवी, दुनिया की दृष्टि से आपका विवाह मुझसे हुआ, लेकिन हमने आज के चरण के नख आपको नहीं देखा, आपके चरणों के नखों का दर्शन नहीं किया, आज आज्ञा दीजिए आपके चरणों में ये सर झुका के आपकी आशीर्वाद प्राप्त करें, आपको मूर्छित देखा नहीं जा सकता। और ये सब गए उस वक्त कृष्ण रथ से उतर के निधि वन में प्रवेश किया। ये ये जो यावत यावत जगह है जहाँ राधा रानी का तथाकथित ससुराल है, जहाँ से वो रोज नंदगांव कृष्ण के भोजन बना करने के लिए यशोदा माँ के बुलाव के जाती थी, और जो जाने का रास्ता है उस रास्ते के बीच में टेर कदम आता है जहाँ हमारे रूप गोस्वामी की भजन कुटीर है। सो राधा रानी ये कथा बहुत साल पहले, कोई 15 साल हुए होंगे, परम पूज्य शिला भक्तिचारु स्वामी महाराज ने चौपाटी मंदिर में, स्कान चौपाटी में सुनाई थी। महाराज के संग हम जुहू से गए थे और उसी यात्रा में महाराज इंडिया गेट से समुन्द्र के अंदर नाव में सब एक पूरा सत्संगियों को लेकर वो एलोरा केव देखने के लिए को एक 2 घंटे का सफर किया था। फिर वहाँ छोटी सी ट्रेन में गए थे महाराज जी के साथ, फिर ऊपर जाके जहाँ पुरानी गुफाएं हैं जिसके अंदर जो बाहर से आए थे पोर्चुगीज उनका निशान है, वहाँ प्रसाद लिया था, नाव में वापस शाम तक आए थे। ये महाराज के संग सानिध्य प्राप्त हुआ था। सो उस समय महाराज ने एक कथा बताई थी कि कृष्ण को अब वृंदावन से तो जाना था, लेकिन जो वृंदावन में गोपियों में राधा रानी का कृष्ण से मिलने की कारण, उसके सतीत्व के ऊपर जो उंगली लोग उठा रहे थे, तो कृष्ण ने एक बहुत मधुर लीला की थी। और वो लीला कृष्ण ने यह की कि यशोदा मैया के पास सर के ऊपर हाथ रख के बैठ गए कि सर में दर्द हो रहा है, आज मैं कहीं जा नहीं सकता, मैया तो वो मैया बड़ी दुखी हुई, क्या करूं। तब कृष्ण ही वैद्य बन के आ गए कि मैं बहुत बड़ा वैद्य हूं, नाड़ी देख के बता सकता हूं। मैया ने कहा आओ वेदराज, देखो मेरे बच्चे के सर में दर्द है। वेदराज कहता है कोई पतिव्रता नारी छन्ने में जिसमें हजारों सोराख है, जमुना जल भर के लाए और इसके सर के ऊपर छड़के तो ये ठीक हो जाएगा। यशोदा ने तो छन्ना घर का उठाया, छन्नी उठाई। वेदराज ने कहा माता नहीं होनी चाहिए, माता नहीं जा सकती। अब तो पूरे ब्रज में डंडोरा लगा दिया, कौन जाएगा और छन्ने को भर के आएगा जमुना जल से? अरे छन्ने को कैसे भरेगा, पानी तो सब बह जाएगा। और जमुना में जाने के लिए भी एक कच्चा धागा बांधा जाएगा, उसके ऊपर चल के जाना है। कोई पतिव्रता नारी ही ये कार्य कर सकती है। तो वह जटिला कुटिला, कुटिला और जटिला एक सास, एक राधा की और एक ननंद। वो ननंद को तो बहुत बड़ा गौरव था, मैं बड़ी पतिव्रता हूं, छन्ना लेके चली है जमुना में, वो कच्चे धागे के ऊपर पांव रखा तो धागा टूटा और पानी भरा तो सब बह गया, सब हंसने लगे, बड़ी पतिव्रता हो रही थी मूर्ख, बड़ी लज्जित हो, अभी किसी को साहस नहीं हो रहा है जाने को। कृष्ण के सर दर्द को ठीक करने के लिए सब सखियों ने कहा राधे, हे किशोरी, ये कार्य आपको करना पड़ेगा। राधा ने अपनी सहेलियों के साथ पुरण लिया, वो बड़ा एक छन्ना लिया, बड़ा छन्ना, आपने देखे बड़े गेहूं वेहूं छानते हैं जिससे धागे कच्चे के ऊपर चल के गई, धागा ऐसे ही खड़ा रहा, डर रही है, क्या सारा समाज मेरे को ब्रज में कहता है कि परकिया रस जो गौरिया वैष्णव के लिए तो सर्वरास सार है, परंतु समाज में परकिया रस को कृष्ण के अलावा और किसी के साथ तो जोड़ा नहीं जा सकता। कैसे इस छन्नी को कैसे नदी में डालूं, छन्ने को पानी की तरफ नीचे ले जा रही है तो देखे जितने सोराख उतनी उंगलियां कृष्ण की नीचे। जो बांसुरी पे उंगली रख सकता है वो अपने भक्त के छिद्रों के ऊपर भी उंगली रख देता है, भक्त के छिद्र बंद। असमय वत्सान मुंचय, समय से पहले भक्तों को मुक्त कर देता है। राधा रानी ने छन्ना जमुना भी डुबाया, ऊपर उठाया, पानी का एक बूंद नीचे नहीं गिरा। सब आश्चर्य में देखने लगे, एक ही पतिव्रता नारी है पूरे ब्रह्मांड में, वो है किशोरी राधा। जो कृष्ण के अतिरिक्त और कहीं उसका मन जाता ही नहीं है, उसके अंदर कृष्ण बाहर कृष्ण, भीतरे बाहरे कृष्ण स्फूर्ति होए। सो राधा रानी के ऐसी स्थिति में मूर्छित देख के जब कृष्ण आए तो कृष्ण का स्वरूप ऐसा हो गया, आंखें खुली की खुली रह गई, हाथ शरीर में चले गए, पांव अंदर चले गए, और जो जगन्नाथ का रूप है ऐसा रूप हो गया श्री कृष्ण का। खुली आंखों से जब राधा रानी को देख रहे थे, ललिता जो रुई लेके सांस देख रही थी कि सांस ले रही है कि नहीं ले रही है किशोरी राधे, उसके कान में कहा श्यामा, श्याम आ गए, किशोरी गोरी, श्याम सुंदर आए। राधा की दो आंखें खुली और जगन्नाथ की आंखें तो खुली हुई थी, कृष्ण की आज आंखें चार हुई। 100 साल के विरह के बाद जो राधा कृष्ण का मिलन हुआ है, ये जगन्नाथ जी का रूप है और ये जगन्नाथ की रथ यात्रा के 3 रथों का रहस्य। आगे सुभद्रा का रथ चलता है, फिर बलराम जी का रथ चलता है और फिर श्री कृष्ण का रथ चलता है। और श्री जगन्नाथ जी का ये रूप अंतरंग भाव से राधा रानी के वृह वेदना को देखकर ऐसा हो गया। ये रूप ऐसे क्यों हुआ है, एक और भी कथा इसके साथ जुड़ी हुई है। आज आप आरंभ में सुन रहे थे कि इंद्रद्युम्न महाराज का नाम आपने सुना था, कथाएं तो अभी और 5 दिन चलेंगी। इंद्रद्युम्न महाराज मालवा प्रदेश के थे, जो आज भी इंदौर क्षेत्र मालवा कहलाता है, और इसकी राजधानी थी उज्जैन, अवंतिका नगरी। ये ब्रह्मा जी के वंश में आ रहे, हम सभी ब्रह्मा जी के वंश के हैं, तो पहली सृष्टि की ही ब्रह्मा जी है, हमारा पितामह तो वही है। इंद्रद्युम्न महाराज ब्रह्मा जी के वंश के अवंतिका नरेश बड़े वैष्णव थे, परम वैष्णव थे। अपने ब्राह्मणों प्रहतों को पुरोहितों को कहा कि जितने यात्री हैं, जितने तीर्थ हुए हैं, उन सब से बुला के मुझे इस जीवन में भगवान का साक्षात दर्शन हो, ऐसा तीर्थ कहाँ है उसका समाचार दो। तो सब तीर्थ यात्री जो तीर्थ करते भ्रमण करते साधु आए, एक साधु उस दिन खड़े होकर कहने लगा, महाराज मैं एक ऐसे तीर्थ में गया हूं, 1 वर्ष तक वहां रहा हूं पुरुषोत्तम क्षेत्र में, नीलाचल धाम में नीलगिरी के ऊपर साक्षात नील माधव का मैंने दर्शन किया है। और निश्चित रूप से मैं जानता हूं कि वहीं आपका साक्षात भगवान का आमने सामने दर्शन होगा। ब्राह्मण बहुत सुंदर उस तीर्थ का, उस पुरुषोत्तम क्षेत्र का, जो शंख के जैसा क्षेत्र है, पुरुषोत्तम क्षेत्र शंख क्षेत्र है, ये कहीं चक्र क्षेत्र होता है कहीं भगवान का, ये शंख क्षेत्र है। और शंख तो भगवान हाथ में रखते ही हैं भक्तों की विजय को घोषित करने के लिए और शत्रु और असुरों को भगाने के लिए। श्री कृष्ण के पांच जन्य शंख को जब उन्होंने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में बजाया था, पांच जन्यम ऋषिकेशो जब बजाया था ना, कौरवों के हार्ट अटैक हो गई थी, हृदय विद्रियंते, हृदय विद्रीण हो गए थे। तो श्री कृष्ण का शंख असुरों के हृदय को विद्रीण करने के लिए, परंतु वो ही शंख लाल हथेली पे धारण करके, लाल होंठों के ऊपर पधराया सफेद शंख को, तो लग रहा था कि कमल में हंस, कमल लाल है उसके ऊपर सफेद हंस बैठा हुआ है, और द्वारका अवन, द्वारका की सीमा पे जब बजाया तो द्वारका वासियों के मृतक शरीर में मानो प्राण आया है, सब आनंद में विभोर होकर कृष्ण के स्वागत के लिए निकले। शंख तो वही है, शत्रुओं के लिए घातक है और भक्तों का सहायक है, हितकारी है। सो शंख क्षेत्र है, और शंख का जो मुख है वो अमर वन कहते हैं, जिसका नाम आज है भुवनेश्वर। ये वन के नाम से प्रसिद्ध था, और जहां भुवन ईश्वर, भुवन का ईश्वर, वहां आज लिंगराज है, कोटि लिंगराज, ये धाम का रक्षक है। ये ऐसा अद्भुत शंकर जी का मंदिर है जिसमें बिल्व पत्तल भी चढ़ता है, तुलसी दल भी चढ़ता है, ऊपर चक्कर भी है और ऊपर त्रिशूल भी है, ये हरिहर है। ये तो काशी में से शंकर जी को भगवान ने पुरुषोत्तम क्षेत्र में स्थान दे दिया, वहां विराजमान है। सो महाराज इंद्रद्युम्न ने अपने पुरोहित से कहा कि उस तीर्थ में हमको ले चलो, हमको तो साक्षात भगवान का दर्शन करना है। पुरोहित ने कहा, महाराज आप भाग्यशाली हो कि ऐसी इच्छा करते हो, राजभोग को त्याग कर भगवान का दर्शन करना चाहते हो, परंतु आप जाएंगे तो राज के मंत्रिमंडल रानियों के साथ रथ चलेंगे, तो मैं अपने भाई विद्यापति को वहां भेजता हूं, वो स्थान को देख के आए, आपके शिविर लगाने की जगह को देखे, स्थान का पता लगा के आए। राजा इंद्रद्युम्न ने यह बात स्वीकार कर ली। विद्यापति रथ के ऊपर चढ़ के कुछ और ब्राह्मणों के साथ तीव्र गति से महानदी के किनारे पहुंचा। ये कल श्लोक आएगा, महाम्बुद तीरे कनक रुचिरे नीलश करे, ये कल आएगा। महानदी के वहां रात को रुके, दूसरे दिन महानदी पार किया और आमरकानन में आए जो भुवनेश्वर है, और वहां से आगे नीलाचल में पहुंचे। रास्ते में संध्या स्नान किया तो कहीं से उन्होंने बताया, पूरा उस यात्री ने बताया था, वो नीलाचल पर्वत है, वहां एक रोहिणी कुंड है और वहां एक शबर आश्रम है, ये सारे उन्होंने ज्योग्राफी बताई थी, भूगोल बताया था कहां है। विद्यापति अपने सांगियों के साथ बैठे ही थे तो आवाज सुनाई दिया कुछ, तो थोड़े आगे गए वन में, गहन वन में, तो एक आश्रम दिखाई दिया, ये शबर आश्रम, वहां वैष्णव बैठे हुए थे, इसका स्वागत हुआ शबर जी का। उनसे शबर जी से कुशल मंगल पूछा। शबर जी कहने लगे, हमारे महाराज इंद्रद्युम्न यहां बहुत बड़ा भव्य नगर बनाना चाहते हैं, भगवान नील माधव का दिव्य मंदिर बनाना चाहते हैं। मैं उन महाराज के शिविर रहने के लिए और नील माधव के दर्शन करने के लिए महाराज आएंगे, उनकी यात्रा से पहले मैं जो है वो एडवांस पार्टी में आया हूं। विश्व बसु नाम का जो शबर था दैत्यपति, ये सारी कथा जो है पुराणों में है। और उसकी लड़की, उसके साथ विवाह, ये कुछ कथाएं और भी हैं, उनकी बात हम न करके हम तो सीधे विश्व बसु के साथ विद्यापति का जो मिलन हुआ शबर विश्वावसु के साथ, ये कौन सा था, शबर आश्रम। तो इसको लिखा है, शब्द लिखा है इसके लिए शबर दीपक आश्रम। सो विश्ववसु को जब ये सुनाया, विश्ववसु ने कहा मैं जानता हूं यहां इंद्रद्युम्न महाराज आएंगे, नगर बनाएंगे, मंदिर का निर्माण करेंगे, मैं चलो आपको कल सुबह दर्शन करने के लिए ले चलता हूं नीलगिरी पे। ये जो कथा पुराण में, कौन सी पुराण की आपको बात कहना चाह रहा था, ये कथा है स्कंद पुराण के आधार पे। स्कंद पुराण में जो पुरुषोत्तम क्षेत्र की कथा है उसमें है, ये सतयुग की बात है। ये वो समय है जब नारद जी साक्षात आया करते थे और इंद्रद्युम्न महाराज के पास आएंगे। तो आज की कथा में हम यहां से आगे बढ़ते हैं। शबर विश्ववसु ने विद्यापति को रात भर चलाया पर्वत के ऊपर। एक ऐसा भी रास्ता आया वहां, एक व्यक्ति के पीछे दूसरा जा सकता है, अंधकार घने बन घने जंगल के अंदर से कांट पत्थर के ऊपर से चलते हुए, और जब रोहिणी कुंड के पास पहुंचे, कहा देखो ये रोहिणी कुंड में यहां से स्नान करना वाला मुक्ति का तो अधिकारी होता है, पाप मुक्त तो हो ही जाता है, स्नान करो और सामने नील माधव का दर्शन करो। और सुंदर नील माधव, इंद्र नील मणि उसका बना हुआ सुंदर ये विग्रह, और चरणों में लक्ष्मी विराजमान है, सुदर्शन चक्र पास में खड़ा है, गरुड़ जी पास में खड़े हैं, और अनंत शेष ऊपर से छाया करके खड़े हैं। बहुत सुंदर ये दर्शन है साक्षात। और दर्शन करने के बाद वहां बैठ के उन्होंने भगवान को प्रार्थना की कि हमारा महाराज आपकी सेवा करना चाहते हैं, मैं तो धन्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। तब वो विश्ववसु ने कहा देखो रात हो जाएगी, यहां से नीचे पहुंच नहीं पाएंगे, आप अब जल्दी निकलिए यहां से। वहां से चल के जैसे वापस आए तो कुछ प्रसाद शबर जी ने दिया, और विद्यापति उस प्रसाद को ग्रहण करते कहते ऐसा प्रसाद मैंने राजमहल में नहीं खाया इंद्रद्युम्न के, ये रस का स्वाद प्रसाद का कहां से आया। शबर जी कहते हैं ये हमारे नील माधव की पूजा करने ब्रह्मा इंद्र आदि देवलोक से सामग्री लाते हैं, उसी का प्रसाद आता है, ये प्रसाद भूमि का नहीं धरती का नहीं है। कल मुझे याद कराना, जगन्नाथ के प्रसाद की कथा बताएंगे, प्रसाद की महिमा बताएंगे। अब विद्यापति ने कहा मैं जल्दी जाऊंगा, मेरे राजा को प्रतीक्षा हो रही है, उन्होंने व्रत धारण किया है, मैं जब तक नहीं जाऊंगा वो अपने व्रत पे पक्के रहेंगे। विश्ववसु ने एक वो माला दी जो कभी न मुरझाए और जिसकी सुगंध सदा रहे, जो माला ब्रह्मा इंद्र आदि भगवान को पूजा के लिए लाते थे, बोला ये महाराज को हमारी ओर से देना। परंतु विश्व वसु कहने लगा मैं जानता हूं महाराज इंद्रद्युम्न आएंगे तब ये नील माधव प्रकट नहीं होंगे, ये स्वर्ण रेत के नीचे चले जाएंगे, ये मैं जानता हूं। ये टाण रोज जाए दो, ये बंदे थे और स्वर्ण रेत के नीचे चले जाएंगे, परंतु निराश होने की बात नहीं है। ब्रह्मा जी ने पहले कहा था इंद्रद्युम्न के लिए भगवान चार मूर्तियों में प्रकट होंगे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के रूप में, और विद्यापति वहां से वापस आ रहे हैं, अवंती का पहुंच रहे हैं, और कैसे उनका स्वागत होगा ये कथा कल करेंगे। हरे कृष्ण। बंद करो ये, मैं बीजे ऊँ मिला जो मैं आप प्रेम केरला जाए तो खबर नहीं। करणो भजावन या कमरे में करणो भज की कर सा।